नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉर्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कारोबारियों और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से संबोधन में कहा, भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे कोलकाता दुष्कर्म पीड़िता की पहचान से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें। आंध्र प्रदेश में फार्मा कंपनी में विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हुई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए असम सरकार ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियमावली को निरस्त करने के विधेयक को स्वीकृति दी। और मौसम विभाग का अगले कुछ दिन के लिए देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम और मध्य भागों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वॉर्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री व्यापारिक नेताओं और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे। कल रात वॉर्सा में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत सभी से जुड़ाव और सबका विकास और कल्याण चाहता है। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से भारत की तटस्थता की नीति रही है, लेकिन आज भारत की नीति सभी देशों से घनिष्ठ संबंध बनाने की है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि ये युग युद्ध का नहीं है, बल्कि भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा राष्ट्र शांति का पक्षधर है और अब दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के पहले चरण में कल वॉर्सा पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत पोलैंड मित्रता को गति मिलेगी और दोनों देशों के लोग लाभान्वित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 45 वर्षों में ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है।
मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर्याप्त है और यह 6 अरब डॉलर का है, जिसके वजह से पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पोलैंड में भारत का निवेश लगभग 3 अरब डॉलर और भारत में पोलिश निवेश लगभग 1 अरब डॉलर का है। पोलैंड में कई भारतीय कंपनियां IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, स्टील, धातु और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। वहीं पोलैंड की लगभग 30 कंपनियां भारत में विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार।
यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर कल यूक्रेन पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में संचालित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज घटना में मृतका की पहचान से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें। न्यायालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि वे मृतका के नाम के सभी संदर्भ और तस्वीरों के साथ वीडियो क्लिप तुरंत हटाएं। मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे न्यायालय के आदेश के अनुपालन के बारे में cyberlaw@legal@mitmaiti.gov.in पर सूचित करें। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक और उप प्राचार्य बुलबुल मुखोपाध्याय और प्राचार्य सुहृता पॉल को पद से हटा दिया गया है। चेस्ट डिपार्टमेंट के प्रमुख अरुणावो दत्तो चौधरी और अस्पताल के सहायक अधीक्षक को भी हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के घाटकोपर में निजी स्कूल में दो बच्चियों से यौन उत्पीड़न मामले में राज्य सरकार ने कल एक प्रशासक की नियुक्ति को स्वीकृति दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हाल की घटनाओं की पृष्ठभूमि में स्कूल के विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रबंधों का प्रस्ताव भी जारी किया गया है।
सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि एक महीने के भीतर राज्य के सभी स्कूलों के प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे लगाए जाएं। स्कूलों को तीसरे पक्ष के माध्यम से या अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय सतर्क रहने और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस द्वारा उनका सत्यापन कराने का भी निर्देश दिया गया है। विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों को एक हफ्ते के अंदर छात्र सुरक्षा समितियां बनानी होंगी। इन सभी व्यवस्थाओं, उनके कार्यान्वयन और प्रभाव की समीक्षा करने के लिए सरकार ने ने स्कूल शिक्षा आयुक्त के साथ साथ अन्य सदस्यों की अध्यक्षता में एक समिति को मंजूरी दी है। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों के साथ होने वाली किसी भी अप्रिय घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित शिक्षा अधिकारी को दी जानी चाहिए। सूचना के विलम्ब होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा करेंगे। श्री धनखड़ गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय में धर्म धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के अच्युतापुरम विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित फार्मा कंपनी के रिएक्टर में कल हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर ये घटना अनदेखी के कारण हुई होगी तो फैक्ट्री प्रबंधन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री नायडू ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और आश्वस्त किया है कि सरकार प्रत्येक पीड़ित की सहायता की पूरी जिम्मेदारी लेगी। श्री नायडू आज अच्युतापुरम का दौरा करेंगे। वहां वे मृतकों के परिजनों और घायलों से मिलेंगे। असम में राज्य मंत्रिमंडल ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और नियमावली को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। अधिनियम में विशेष शर्तों में अल्प आयु में विवाह की अनुमति दी गई थी। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष के आरंभ में ही इस अधिनियम को समाप्त करने का फैसला किया था। बैठक में अधिनियम को निरस्त करने के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि असम की बेटियों और बहनों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाल विवाह के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे इससे पहले अधिवेशन में कई मुख्य विधेयक लाए जाएंगे। ये अधिवेशन 30 अगस्त तक चलेगा। मध्य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है।
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया जारी तामील और निष्पादन नियम 2024 को राजपत्र में आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया है। इस कदम की सराहना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देश के नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत स्वीकृत इस पहल का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाना, कानूनी कार्रवाई को मजबूत करना और न्यायिक प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने सभी प्रकार के संबंध कानून कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए। ये देश में पहला प्रयोग है।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नए नियम उन लोगों पर ही लागू होंगे जो व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप या अन्य डिजिटल संचार विधियों का उपयोग करते हैं। वहीं डिजिटल संचार सेवाओं से अपरिचित व्यक्तियों के लिए समन और वारंट पारंपरिक तरीके से तामील किए जाते रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कल मनाया जाएगा। पिछले वर्ष इसी तिथि को चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। कल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में तारामंडल के निदेशक और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. बी.आर. गुरुप्रसाद ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया।
जवाहरलाल नेहरू प्लानिटेरियम बेंगलुरु इज ऑर्गेनाइजिंग मेनी इंटरेस्टिंग इवेंट्स, educational events. Especially I would like to mention that we'll be exhibiting quite large models of Chandrayaan 3 spacecraft, showing the propulsion module as well as the Vikram lander and Pragyan rover. We'll be exhibiting a model of LVM-3 which launched Chandrayaan 3, and we are planning to exhibit conspicuous model which shows the path taken by Chandrayaan 3 to the moon and the way it landed.
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक कारखाने में हुई दुर्घटना में हुए लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता निधि से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये देने की घोषणा की है। देश के पूर्व पश्चिम पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में अगले चार दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले सात दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भागों में तेज वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले पांच दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश से राज्य के कई भागों में बाढ़ के हालात में कोई सुधार नहीं है। मौसम विभाग ने आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राज्य प्रशासन इससे निपटने और लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाढ़ का पानी रिहायशी क्षेत्रों में घुस जाने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अहना जॉर्ज, अनाया भावसर और गुंजन मंत्री को फीबा अंडर 19 बास्केटबॉल विश्व कप 2024 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। ये प्रतिस्पर्धा 26 अगस्त से हंगरी में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल डॉ मांडविया ने सरकार की खेलो इंडिया पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पहल उभरती प्रतिभाओं की सफलता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
धन्यवाद फरहत। पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है 45 साल बाद पोलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री, कहा भारत का विजन अब ग्लोबल। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को प्रकाशित किया है, ये युग युद्ध का नहीं संवाद का है। आरजी का डॉक्टर दुष्कर्म हत्या मामले में पूर्व प्रचार का सच से सामना कराने की तैयारी में सीबीआई, जनसत्ता की सुर्खी है। वहीं दैनिक जागरण लिखता है पूर्व प्रचार संदीप घोष पर शवों के सौदे का आरोप, रिश्वतखोरी गिरोह का भी पता चला। राष्ट्र सहारा ने कल एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की खबर प्रकाशित की है, भारत बंद कहीं असर कहीं बेअसर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने किया था बंद का आह्वान। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही बेटियां प्रदर्शन में अव्वल, दैनिक जागरण की सुर्खी है। नव भारत टाइम्स ने कामयाबी का शिखर शीर्षक से शिक्षा मंत्रालय के विश्लेषण को खबर बनाई है। पत्र लिखता है प्राइवेट स्कूलों में बोए जाते हैं बेटे और सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी उग आती हैं बेटियां। देश विदेश में सोलर ऊर्जा की महिला इंजीनियर तैयार कर रही ग्रामीण महिलाएं तिलोनिया स्थित बेयरफुट कॉलेज में सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बनाई पहचान, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कारोबारियों और पोलैंड के गणमान्य लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से संबोधन में कहा भारत संघर्ष को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति में विश्वास करता है। सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वे कोलकाता दुष्कर्म पीड़िता की पहचान से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। आंध्र प्रदेश में फार्मा कंपनी में विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हुई। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। कम उम्र में विवाह को रोकने के लिए असम सरकार ने मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियमावली को निरस्त करने के विधेयक को स्वीकृति दी। और मौसम विभाग का अगले कुछ दिन के लिए देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिम और मध्य भागों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।